हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है हमारे आज के रविवार के कार्यक्रम में, और बहुत ही बड़ा सौभाग्य है हमारा कि आज हनुमान जयंती है और हमारे रविवार के आज के कार्यक्रम में हम हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। हमारी इस वर्ष की राम कथा में हमने सुनाया था कि रामायण प्रभु श्री राम की जो कथा है उसे सुनने से पहले हमें रामायण के जो रचयिता हैं वाल्मीकि मुनि, इनकी कृपा ग्रहण करनी है और अवश्य ही प्रभु श्री राम की कृपा। परंतु इसके साथ साथ हमने ये भी चर्चा की थी कि यदि हमें रामायण ठीक ठीक समझनी है तो कृपा हमें चाहिए श्री हनुमान जी की, और हनुमान जी विशेष रूप से हम साधकों के लिए इतने प्रेरणादायक हैं कि उन्होंने न केवल कैसे साधना भक्ति करनी चाहिए बल्कि एक गुरु की भूमिका भी निभाई है कि एक शिष्य को कैसे बिना गुरु की कृपा के भगवान नहीं मिल सकते। तो वैसे ही यदि हमें प्रभु श्री राम की कृपा चाहिए तो बिना हनुमान जी की कृपा के प्रभु श्री राम सीताराम की कृपा नहीं मिल सकती। इसलिए रामायण में हनुमान जी का गुणगान बहुत जगहों पर हुआ है, परंतु विशेष रूप से हनुमान जी का गुणगान हुआ है सुंदरकांड में। और नित्यकाल से हनुमान जी, इनका गुणगान होता आया है सुंदरकांड के गुणगान करते हुए। परंतु ये प्रश्न उठ सकता है कि सुंदरकांड, जैसे कि जो 7 कांड हैं रामायण के, उनमें से हर एक कांड के जो नाम हैं वो उस कांड में जो जो लीलाएं हुई हैं उसके संदर्भ में है। जैसे बाल कांड, उसकी चर्चा हमने की कि विश्वामित्र मुनि एक बालक के समान प्रभु श्री राम को लेने आए, अपना सर्वस्व त्याग कर, इसलिए जो पहला कांड है बाल कांड कहा गया है। फिर हमने इस वर्ष चर्चा की अयोध्या कांड से, जहां से प्रभु श्री राम का राज्याभिषेक होने वाला था परंतु वो नहीं हो सका और उन्हें वनवास जाना पड़ा। तत्पश्चात अरण्य कांड, तो ये सारे जितने भी कांड हैं, किष्किंधा कांड, युद्ध कांड, इन सब में केवल नाम से समझ में आ जाता है कि क्या क्या लीलाएं उनमें हैं। परंतु सुंदरकांड ये जो नाम है, ये सुंदरकांड, इसको कैसे हम समझ पाएंगे कि सुंदरकांड में सुंदर कौन है? कोई तो सुंदर होना चाहिए सुंदरकांड में, इसीलिए तो सुंदरकांड नाम है। क्या सुंदरकांड में माता सीता सुंदर है? परंतु माता सीता, उनकी सुंदरता नहीं बताई गई सुंदरकांड में, क्योंकि माता सीता अब लंका में है रावण के अधीन, राम से अलग। तो राम के वियोग में माता सीता की सारी सुंदरता जाती रही, क्योंकि सीता माता, इनकी सुंदरता जब वो प्रभु श्री राम के साथ रहती हैं तभी वो अपने पूर्ण सौंदर्य में रहती हैं। तो क्या सुंदरकांड में माता सीता जिनका उल्लेख हुआ है, क्या वो सुंदर? नहीं, वो तो नहीं। क्या प्रभु श्री राम, उन्हें सुंदर बताया गया है? ये भी सत्य बात नहीं, क्योंकि प्रभु श्री राम को सुंदर बताने की आवश्यकता ही नहीं है। तो सुंदर कांड में सुंदर हैं हनुमान जी, क्योंकि हनुमान जी ने सीता और राम का मिलन कराया। और जो भी राम और सीता का मिलन कराता है वो वास्तविक रूप में सुंदर होता है। तो इसलिए रामायण में वाल्मीकि मुनि ने राम और सीता का मिलन कराया, इसलिए उन्हें भी सुंदर कहा गया है। हनुमान जी ने राम और सीता का मिलन करवाया, इसलिए हनुमान जी को सुंदर बताया गया है। और कौन जिन्होंने राम और सीता का मिलन कराया? एक और व्यक्ति हैं, विश्वामित्र मुनि, उन्हें भी सुंदर बताया गया है। इसलिए विशेष रूप से सुंदर कांड में हनुमान जी को सुंदर बताया गया है। और सुंदर कांड में हनुमान जी जिन्होंने लंका पर चढ़ाई की और लंका पहुंचने से पहले बहुत कुछ हुआ उस यात्रा में, और हनुमान जी जो कि केवल वही सक्षम थे लंका तक जाकर सीता का संदेश लेकर वापस आने में, बाकी कोई सक्षम नहीं थे। हालांकि उस समय सभी उपस्थित थे, मैंद, द्विविद, जांबवान, अंगद, ये सभी उपस्थित थे, परंतु इनमें से कोई भी संभव नहीं उनमें संभव नहीं था उनको कि वो 100 योजन समुद्र के 100 योजन पार कर वापस आ जाए। केवल हनुमान जी, और हनुमान जी जब वो छलांग लगाए उन्होंने महेंद्र पर्वत से पूर्ण तैयारी में, अब ऐसा नहीं कि केवल एक कोई साधारण सा ओलंपिक का लॉन्ग जंप लेना है, लॉन्गेस्ट जंप हनुमान जी ने लिया 100 योजन। तो महेंद्र पर्वत से उन्होंने छलांग लगाई, और हनुमान जी ने जैसे ही महेंद्र पर्वत से छलांग लगाई तो सारा महेंद्र पर्वत चूर चूर होने लगा उनके दबाव से। इतनी शक्ति हनुमान जी के अंदर, उनके दबाव से महेंद्र पर्वत चूर चूर होने लगा, और सारे ऋषि मुनि हिल गए जो तपस्या में बैठे थे अपनी गुफाओं में। परंतु हनुमान जी की ये यात्रा, ये उनका फ्लाइट, कोई आरामदायक यात्रा नहीं थी उनकी। और बहुत टीकाएं इस पर लिखी हुई हैं कि कौन कौन से राक्षस बीच में आए, और इन राक्षसों के पीछे आने का कारण क्या था, और ये सारे राक्षस कौन से अनर्थों के प्रतीक थे। तो सबसे पहले हनुमान जी माता सीता और श्री राम, इनके संदर्भ में श्री वैष्णव आचार्य बताते हैं कि कैसे समझा जाए, किसी साधक को कैसे समझना होगा कि हनुमान जी, माता सीता और प्रभु श्री राम, ये तीनों कितने आवश्यक हैं किसी साधक के जीवन में। तो हनुमान जी की तुलना यदि शरीर से की गई है तो माता सीता की तुलना आत्मा से की गई है, कि बिना आत्मा का क्या शरीर। तो हनुमान जी का जीवन है कि भक्ति को जो शक्तिमान है, जो शक्ति है, उनको शक्तिमान के पास ले जाना, और आत्मा बिना परमात्मा के उसका कोई अर्थ नहीं। तो जैसे शरीर निर्भर है आत्मा पर और आत्मा निर्भर है परमात्मा पर, वैसे हनुमान जी, माता सीता और प्रभु श्री राम, इनका संबंध इस प्रकार से है। और उदाहरण दिया गया है कि जैसे शब्द होता है और उस शब्द का अर्थ होता है, तो शब्दार्थ वो निर्भर है शब्द के ऊपर, और बिना शब्दार्थ के शब्द का कोई अर्थ नहीं, और शब्दार्थ में एक प्रकार का रस होता है। हर एक शब्द में अलग अलग प्रकार के रस होते हैं। जैसे कि राम, ये भी एक शब्द है, हालांकि भगवान का नाम है, परंतु इसके अंदर रस भरा हुआ है। वैसे ही कोई भी यदि शब्द आप लो तो शब्द का अर्थ होता है और उसके साथ उसके पीछे कोई रस छिपा होता है। जैसे कि द्वेष, तो द्वेष और द्वेष एक शब्द है और उसका अर्थ होता है, और उसके पीछे कौन सा रस छिपा है द्वेष में? कटुता, ये रस छिपा है। जैसे कि बहुत से ऐसे शब्द हैं जिनसे पता लग जाता है, मधु, मधु से पता लगता है कि उसका अर्थ क्या है और उसमें कौन सा रस छिपा है, मधुकर छिपा है। तो वैसे ही हनुमान जी, माता सीता और प्रभु श्री राम के संदर्भ में बताया गया है कि शब्द शब्दार्थ और शब्दार्थ में रस, वो हैं ये तीनों। और आचार्य, इनकी तुलना हनुमान जी से की गई है, आचार्य जो मंत्र देता है शिष्य को और उस मंत्र का मंत्रार्थ, तो माता सीता वो मंत्र और प्रभु श्री राम उस मंत्र के अर्थ। तो एक साधक के जीवन में ये सारे जो विश्लेषण बताए गए हैं हनुमान जी, माता सीता और प्रभु श्री राम के संदर्भ में, ये सब बहुत आवश्यक हैं। और हनुमान जी, उन्होंने जो अपनी यात्रा की माता सीता को लेकर फिर प्रभु श्री राम से मिलाने हेतु, जो उन्होंने छलांग लगाई 100 योजन लंका पहुंचने के लिए, सीता को ढूंढने के लिए हनुमान जी का सागर पार करना उसी के समान है जैसे भक्ति को प्राप्त करने हेतु साधक का भव सागर पार करना। हम सब भक्ति को खोज रहे हैं, माता सीता को खोज रहे हैं, और हमारे स्वयं की व्यक्तिगत भक्ति को चुरा लिया है काम रूपी रावण ने। रावण है मूर्तिमान काम, काम वासना। तो काम वासना ने हमारी भक्ति को चुरा लिया है, और प्रभु श्री राम अब हमारे जीवन में अपने शक्ति के विहीन हैं। तो हनुमान जी की कृपा यदि नहीं होगी तब तक हम सीता को राम से नहीं मिला पाएंगे। और सीता को राम से मिलाने के बीच में कौन है? भवसागर। ये लंका पहुंचने से पहले जो समुद्र बीच में आ रहा है, इसकी तुलना भवसागर से की गई है। तो प्रभु श्री राम से हमारी भक्ति मिले, इसके बीच में हमारे हैं ये भवसागर, ये भौतिक संसार। और भौतिक संसार का अर्थ है हमारा भौतिक शरीर, भौतिक शरीर का अर्थ है भौतिक इच्छाएं, भौतिक इच्छाओं का अर्थ है अनर्थ हमारे हृदय के। तो इन सब को हम कैसे पार करें, ये हनुमान जी अपने उदाहरण से सिखाए हैं अपने इस यात्रा से। तो भक्ति में साधना बहुत महत्वपूर्ण है, कि यदि हमें भवसागर पार करना है तो हमारी साधना पक्की होनी चाहिए। यदि साधना पक्की नहीं तो हम ये भवसागर के तट पर ही खड़े रह जाएंगे। इसलिए साधना बहुत आवश्यक है। कई बार लोग ये कह देते हैं कि मेरे अंदर भगवान के प्रति भक्ति बहुत है, बहुत भक्ति मैं रखता हूं राम और कृष्ण के प्रति, परंतु जब पूछा जाता है कि साधना क्या करते हो अपने साध्य को प्राप्त करने के लिए, तो साधना कुछ नहीं दिखती। तो बिना साधना के भक्ति का कोई अर्थ नहीं। तो साधना बहुत महत्वपूर्ण है साध्य को प्राप्त करने के लिए। इसलिए हम इस यात्रा में देखेंगे हनुमान जी की जो यात्रा, इसमें कैसे साधना पर प्रहार हुआ और कैसे हनुमान जी ने अपनी साधना पक्की रखी, तब जाकर वो सीता से भेंट कर पाए। साधना के पश्चात सेवा। केवल साधना ही काफी नहीं, अपितु साधना के साथ सेवा होनी चाहिए, और यही हनुमान जी का पूरा जीवन यही है, सीताराम की सेवा। दिन रात हनुमान जी केवल सीताराम की सेवा में लगे रहते हैं। तो अपने इस यात्रा में भी कैसे उनकी सेवा के ऊपर प्रहार हुआ और कैसे हनुमान जी ने उस पर विजय प्राप्त की, इस अपने सेवा को पक्की करने के लिए ये अपने यात्रा में उन्होंने सिखाया। और भक्ति का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है भक्तों के साथ संबंध। हमारी साधना भी पक्की होगी और सेवा भी हम बहुत कर रहे होंगे, परंतु यदि भक्तों के साथ संबंध ठीक नहीं तो भगवान कभी प्रसन्न नहीं हो पाएंगे उस साधना से, उस सेवा से। तो बहुत महत्वपूर्ण है भक्तों का संग। और अंततः जब ये तीन साध्य हो जाते हैं हमारी भक्ति में, तब फिर प्रचार। तो ये चार जो बहुत महत्वपूर्ण अंग हैं भक्ति के, साधना, सेवा, भक्तों का संग और प्रचार, हमारे भक्ति में हम देखेंगे कि कौन कौन से अनर्थ बीच में आते हैं जब हम हमारी साधना भक्ति में सेवा, भक्तों का संग और प्रचार करने का प्रयास जब करते हैं। तो हम हनुमान जी का प्रवास देखेंगे कि हनुमान जी ने जब यात्रा प्रारंभ की तो कौन कौन से राक्षस बीच में आए, और इन राक्षसों के आने का कारण क्या था, और किसके ये प्रतीक थे सारे राक्षस। और हमने ये जो चार मुद्दे लिए भक्ति के, कैसे ये राक्षस इन भक्ति के चार मुद्दों पर हमारे साधना भक्ति में प्रहार करते हैं, अनर्थ हमारे हृदय में। सबसे पहले जब हनुमान जी प्रारंभ किए अपनी यात्रा, तो मैनाक पर्वत ने अपने आप को प्रस्तुत किया। समुद्र से ये मैनाक पर्वत बाहर आकर हनुमान जी के सामने खड़ा हो गया। ये मैनाक पर्वत का इतिहास इस प्रकार से है कि पूर्व काल में जितने भी पर्वत हुआ करते थे, इन पर्वतों को पंख हुआ करते थे, ये पर्वत उड़ा करते थे, उड़ सकते थे ये सारे पर्वत, इनमें इतनी शक्ति थी। परंतु उड़ते उड़ते ये पर्वत किया क्या करते कि कई बार मस्ती में ये किसी प्रांत के ऊपर जाकर बैठ जाते और खत्म कर देते उसे। तो इंद्रदेव बहुत क्रोधित हुए इन पर्वतों के ऊपर, और अपने वज्र से इंद्रदेव ने इन पर्वतों के पंख को काट दिया। तो जैसे ही पर्वतों के समुदाय में पता लगा कि इंद्रदेव अपने वज्र से हम सब पर्वतों के पंख काट रहे हैं, अब हमारा उड़ना बंद होने वाला है, तो एक पर्वत मैनाक पर्वत वो उड़ते 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 कहीं पर छिपने के लिए जगह ढूंढ रहा था। तो वायुदेव ने मैनाक पर्वत को समुद्र में, इस समुद्र में शरण दी। इसलिए मैनाक पर्वत वो वायुदेव के प्रति बहुत ऋणी अपना रखे थे। इसलिए जब उन्होंने देखा कि वायु के पुत्र हनुमान जी वो यहां से गुजर रहे हैं, तो मैनाक पर्वत वो अपने आप को प्रस्तुत करते हैं और हनुमान जी को कहते हैं कि इतनी लंबी छलांग आपने लगाई है, 100 योजन आपको जाना है, तो जाने से पहले थोड़ा यहां पर आराम फरमाइए, इस मैनाक पर्वत के ऊपर आप थोड़ा आराम कर लो, तत्पश्चात चले जाना। तो मैनाक पर्वत पर आराम करने का जो प्रस्ताव रखा गया हनुमान जी के सामने, इसके विषय में बताया गया है कि मैनाक पर्वत किसी साधक की साधना में अवरोध डालने के लिए सुविधाएं जब प्रदान करता है तो वो अनर्थ का प्रतीक है। तो मैनाक पर्वत वो हनुमान जी की साधना में अवरोध कैसे डाल रहा था? सुविधाएं प्रदान कर। तो वैसे ही जब हम भगवान श्री राम की भक्ति में लगते हैं, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लगते हैं, तो हमारी साधना भक्ति में लगते सो बहुत सी सुविधाएं सामने आती हैं, क्योंकि हम संपर्क में आए हैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के। तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के संपर्क में यदि कोई आता है तो जैसे कि कोई बहुत बड़ा उद्योगपति है, उसका ड्राइवर जब उसकी गाड़ी चलाता है तो उसे उतनी बड़ी गाड़ी चलाने का सौभाग्य मिल रहा है। उस गाड़ी में एसी है और सारी सुख सुविधाएं हैं, हालांकि है वो मालिक के लिए, परंतु क्योंकि वो ड्राइवर मालिक के संपर्क में है इसलिए सारी सुख सुविधाएं वो ड्राइवर को पहले मिलती है। यदि यही उदाहरण हम लें कि कोई बहुत ऐश्वर्यशाली व्यक्ति है, बड़ा उद्योगपति है और वो रोज ऑफिस में जाने के लिए अपनी बड़ी गाड़ी में जाता है और उसका ड्राइवर चलाता है उस गाड़ी को, तो मालिक तो पीछे बैठता है, ड्राइवर आगे बैठता है, तो गाड़ी की सारी सुख सुविधाएं पहले ड्राइवर को मिलती है, एसी की हवा पहले ड्राइवर को मिलती है, फिर जाके पीछे मालिक पर पड़ती है। तो भक्ति में जब हम साधना में लगते हैं तो ये सारी भौतिक सुख सुविधाएं माया देवी प्रस्तुत करती हैं, किस लिए? हमें परखने के लिए, जैसे कि हनुमान जी को परखने के लिए ये मैनाक पर्वत अपने आप को प्रस्तुत किया। श्रील प्रभुपाद जी वो एक बार बता रहे थे अपने शिष्यों को कि भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें 2 बार परखा, 2 बार परीक्षा ली उनकी। एक बार जब भगवान श्री कृष्ण ने सब कुछ छीन लिया प्रभुपाद के जीवन से, उनका परिवार, उनका जो धंधा चल रहा था दवाइयों का, वो सब कुछ, सारे पैसे, सब कुछ छीन गए, तो प्रभुपाद ने कहा कि कृष्ण ने उनकी परीक्षा ली जब सब कुछ छीन लिया उनसे, हर्ष्ये तद्धनम शनै, और उसके पश्चात श्रील प्रभुपाद कहे कि एक और बार भगवान श्री कृष्ण ने उनकी परीक्षा ली जब भगवान ने सब कुछ दिया श्रील प्रभुपाद को, और प्रभुपाद ने कहा कि ये जो दूसरी परीक्षा थी ये ज्यादा कठिन थी, कि जब सब कुछ मिलता है उस समय उसे भगवान को अर्पित करना ये थोड़ा कठिन हो जाता है, जब कुछ है ही नहीं अर्पित करने के लिए तब तो फिर गोविंदा अर्पणम अस्तु, कुछ है ही नहीं तो ठीक है, सब कुछ आपका तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, ये गाना बहुत आसान होता है, हालांकि लोग गाते हैं परंतु घर में यदि जाके देखो तो ये गाते हुए क्या अर्पित करते हैं उनको। मैं बचपन में गाया करता था तेरा तुझको अर्पण, परंतु देखता मैं अर्पण क्या कर रहा हूं उनको, केवल मिश्री के टुकड़े छोटी सी कटोरी में, और फिर हम गाते हैं तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। अरे भगवान भी पूछेंगे, अरे सही कह रहे हो, क्या लागे मेरा, कुछ मेरा तो है नहीं तुम्हारे घर में, सब कुछ तो तुमने अपने लिए बना रखा है। तो वो ज्यादा कठिन परिस्थिति होती है जब सब ऐश्वर्य आ जाता है और तब उसे भगवान को अर्पित करना। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने कहा कि इन दोनों परीक्षाओं में, ये जो दूसरी परीक्षा थी ये ज्यादा कठिन थी। हालांकि श्रील प्रभुपाद नम्रता से कह रहे थे और श्रील प्रभुपाद दोनों ही परीक्षाओं में उत्तीर्ण हुए। तो जब हम सुख सुविधाओं की बात करते हैं तो ये एक अवरोध कैसे बन सकता है, क्योंकि भक्ति में तीव्रता कम हो जाती है जब सब कुछ अपने अनुसार चलता है भक्ति में। कि जब मुझे लगता है कि मुझे जैसी नौकरी चाहिए मेरी भक्ति के लिए, वैसी नौकरी मुझे मिल गई, मुझे जैसा घर चाहिए मेरी भक्ति के लिए वैसा घर मुझे मिल गया, मुझे जैसा परिवार चाहिए मेरी भक्ति के लिए वैसा परिवार मुझे मिल गया। और कई बार ये सब अच्छी बातें हैं, परंतु कई बार होता क्या है कि ये सारे जो सुख सुविधाएं हैं, इन सुख सुविधाओं के वजह से हमारे भक्ति की तीव्रता कम हो जाती है। इसलिए कुंती महारानी क्यों विपदाएं मांग रही हैं? कई बार हम जब कुंती महारानी की प्रार्थना पढ़ते हैं तो उन्हें पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है और सुनाने में भी बहुत अच्छा लगता है। कुंती महारानी देखो कितना अच्छा प्रार्थना करती, विपद संतु तस् शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु, कि मुझे हे जगत गुरु आप विपदाएं दें। और यदि जगत गुरु विपदा देना शुरू करें, माया देवी तो विपदा देती हैं, विपत्ति देती हैं, परंतु यदि उन माया देवी के अधिष्ठात्रा देव यदि विपदा देना विपत्ति देना शुरू करें, जैसे कि पिछले साल में रशिया था मॉस्को में, तो वहां पर मैंने कुंती महारानी का ये श्लोक लिया, विपदा संतु तस् शाश्वत, क्योंकि वहां के भक्तों के जीवन में बहुत विपत्तियां आई, इसलिए मैंने ये श्लोक लिया। तो वहां के एक भक्त बता रहे थे कि वहां के मंदिर में उन्होंने मॉर्निंग प्रोग्राम में कुंती महारानी की ये प्रार्थना गाना शुरू की। जैसे हम चैतन्य शिक्षाष्टकम गाते हैं, तुलसी आरती और ये सब कुछ गाते हैं, तो उसके साथ साथ ये भी वो गाया करते थे, विपद संत तस् शाश्वत, और कुंती महारानी के भाव में प्रार्थना किया करते थे भगवान। और उन्हें एक ही महीने में वो बंद करनी पड़ी प्रार्थना, क्योंकि इतनी तीव्रता से प्रार्थना कर रहे थे तो भगवान फिर रेसिप्रोकेट करने लगे, भगवान आदान प्रदान करने लगे, तो इतनी विपदाएं आ गई। तो इन्होंने सोचा कि हम प्रार्थना तो कह रहे हैं कुंती महारानी की, परंतु हम कुंती महारानी के स्तर पर नहीं, इसलिए फिर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये ठीक है, भगवान आप हमें आपकी सेवा में लगाते रहो। तो कुंती महारानी उन्होंने ये प्रार्थना क्यों की, और ये आप जान लीजिए कि कुंती महारानी की ये प्रार्थना कब उन्होंने कही, जब भगवान श्री कृष्ण ने इनके जीवन की सारी विपदाएं दूर की, उसके पश्चात। ऐसा नहीं कि कुंती महारानी वो चखना चाहती थी कि विपदा में भगवान की भक्ति कैसी होती है, वो तो चख ली थी, पूरा जीवन विपदाओं से भरा था कुंती महारानी और पांडवों का, और उन सब से गुजरने के पश्चात जब सब कुछ मिल गया, सारी सुख सुविधाएं मिल गई, तब कुंती महारानी कहती है नहीं, इसमें तीव्रता नहीं आ रही। अब राज्य मिल गया, सब कुछ सुख समृद्धि में है, इसमें ये तीव्रता नहीं आ रही, विपदा दो। तो कुंती महारानी कोई विपत्तियों से आसक्त नहीं है, परंतु कुंती महारानी आसक्त किससे है? भक्ति में तीव्रता। इसलिए हमारी साधना भक्ति में भी हमें देखना चाहिए कि यदि सुख सुविधाएं मेरी तीव्रता को कम कर रही हैं, तो यह अच्छा होगा कि मैं ज्यादा सुख सुविधा में न रहूं, क्योंकि यदि ज्यादा सुख सुविधा में हम अपनी भक्ति करेंगे तो फिर यहीं पे रहना होगा, और फिर जो देवता हैं वो भी भगवान की भक्ति करना चाहते हैं और भगवान की भक्ति करते हैं, परंतु सुख सुविधाओं में रहते हुए, तो उन्हें भगवान की भक्ति करनी है परंतु सोमरस और पार्टियों के साथ, अप्सराओं के साथ और इन सब के साथ हरे कृष्णा भी चलेगा बीच में, लास्ट में हरे कृष्णा भी गाएंगे। तो यहां पर मैनाक पर्वत वो साधना भक्ति में सुख सुविधाओं का जो अवरोध है वो बनकर हनुमान जी के सामने प्रकट हुआ। तब हनुमान जी ने मैनाक पर्वत के साथ व्यवहार कैसा किया कि जब किसी साधक के जीवन में सुख सुविधाएं आती हैं तो वो साधक सुख सुविधाओं से कैसे व्यवहार करे, क्या उसे छोड़ दे, त्याग दे, कैसे उसके साथ व्यवहार करे। जैसे हनुमान जी ने किया क्या कि जैसे मैनाक पर्वत ने ये सुविधा अपने सामने प्रस्तुत की कि यहां पर थोड़ा आराम कर लो इस पर्वत पर, तो हनुमान जी उन्होंने केवल स्पर्श किया, मैनाक पर्वत को स्पर्श किया ताकि मैनाक पर्वत को बुरा भी न लगे, और हनुमान जी अपने दृढ़ संकल्प से च्युत भी न हो। तो एक साधक को इसी प्रकार से बुद्धिमत्ता से काम लेना चाहिए जैसे हनुमान जी ने बुद्धिमत्ता से काम लिया। तो यह सबसे पहला अवरोध हनुमान जी की यात्रा उनके प्रवास में आया, मैनाक पर्वत। इसके पश्चात सुरसा राक्षसी, ये सुरसा राक्षसी बहुत ही विचित्र राक्षसी थी, इसे ब्रह्मा जी से वरदान मिला था। ब्रह्मा जी ने बहुत से लोगों को ऐसे वरदान दिए, हिरण्यकशिपु और ये सुरसा और बहुत से ऐसे उनको वरदान दिए, हालांकि भगवान की लीला और रोचक बना दी वरदानों के कारण। तो सुरसा को यह वरदान मिला था कि जो भी इस समुद्र से गुजरेगा उसे सुरसा के मुख में जाना होगा। तो सुरसा ये अब सेवा में अवरोध लाने के लिए अपने आप को प्रस्तुत की कि हनुमान जी अब अपनी सेवा के लिए निकले हैं, और उनकी सेवा में बाधा डालने के लिए सुरसा बीच में आती है। और सुरसा किसका प्रतीक है? मिथ्या अहंकार। कि जब हमारी सेवा में हम अहंकारी बन जाते हैं कि देखो मैं सेवा कर रहा हूं, मैं चामर हिला रहा हूं, मैंने आज आरती की और मैंने आज प्रसाद बनाया, जब आकर कोई पूछता आज का प्रसाद इतना स्वादिष्ट, आज का प्रसाद किसने बनाया? इस दास ने, आपके दास ने प्रभु। तो हालांकि हम अपने आप को दास बोलते हैं परंतु उसके पीछे मनोभाव क्या रहता है, तो सेवा में अहंकार या मिथ्या अहंकार जब जागृत होता है तो ये सुरसा इसका प्रतीक है। तो सुरसा ने किया क्या कि जैसे ही हनुमान जी अब मैनाक पर्वत से आगे निकले तो ये सुरसा आगे आई और ये सुरसा ने अपना मुंह बा दिया, मुंह खोल दिया। तो हनुमान जी ने देखा, एक तो ये कौन है, भयानक दिखने वाली ये राक्षसी, और इसने अपना मुंह क्यों खोल दिया ऐसे, जैसे कई बार प्रवचन में होता है ना, प्रवक्ता को बहुत से सुरसा के एजेंट दिखते हैं और बीच बीच में थोड़े थोड़ा मुंह खुलता रहता है। तो कई बार प्रवक्ता को हनुमान जी के जैसा होना पड़ता है, जैसे हनुमान जी अब ये सुरसा से कैसे व्यवहार करेंगे। तो सुरसा ने अपना मुंह खोल दिया और सुरसा ने कहा कि मुझे ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है कि जो भी यहां से गुजरेगा मेरे मुख में जाएगा। तो अब हनुमान जी, हालांकि हनुमान जी में इतनी शक्ति कि एक थप्पड़ यदि सुरसा को लगाते तो ये सुरसा की सारी बोलती बंद हो जाती, अपने मुंह से इतना खोल खोल कर जो बोल रही थी। परंतु हनुमान जी ने यह देखा कि मेरे सेवा में ये राक्षसी मिथ्या अहंकार के रूप में आई है, तो मुझे घमंड नहीं करना चाहिए कि मैं प्रभु श्री राम की सेवा में निकला हूं तो तुम कौन हो। तो हनुमान जी ने कहा कि अच्छा, ब्रह्मा जी ने यह वरदान दिया है। तो हनुमान जी ने सोचा कि ब्रह्मा जी का वरदान है वो भी पूरा होना चाहिए, नहीं तो वो भी भगवान के भक्त हैं। तो सुरसा ने अपना मुंह खोला 10 योजन, सोचिए 10 योजन। कई बार हम भी प्रवचन में प्रयास करते हैं मुंह खोलने का, इतना लेकिन नहीं खुलता। कि खुलता है, 10 योजन खुल जाता है। सुरसा ने 10 योजन अपना मुख खोला तो हनुमान जी ने अपने आप को 20 योजन बना लिया। तो सुरसा ने देखा, अरे ये तो अब मेरे मुख में फिट नहीं होगा। तो सुरसा ने 30 योजन, जब हनुमान जी 20 योजन के हो गए तो सुरसा 30 योजन, तो हनुमान जी फिर 40 योजन, फिर दोनों में स्पर्धा चालू हो गई। फिर हनुमान जी सुरसा और 50 योजन, हनुमान जी 60 योजन, सुरजा 70 योजन, हनुमान जी 80 योजन, सुरसा फिर 100 योजन। सोचिए, वो समुद्र ही 100 योजन का था। तो सुरसा, उसने अपना मुख 100 योजन कर लिया। तो हनुमान जी फिर उन्होंने युक्ति निकाली, हनुमान जी एकदम छोटे से हो गए, एक मच्छर के समान तुरंत, और इसके मुख में गए, जाकर घूम फिर के आ गए। इतना बड़ा मुख था 100 योजन का। तो एक सैर लगा के आ गए अंदर से, और ये सुरसा को समझ में नहीं आया कि हनुमान जी 80 योजन से इतने छोटे कब हुए, कब अंदर गए, कब बाहर आ गए। और फिर ये अपना मुंह खोले हुए, जब मुंह बंद किया तो हनुमान जी बाहर आ गए और बोले कि देखो, ब्रह्मा जी का वरदान पूरा कर दिया मैं। वरदान था कि मुख में जाना है जो भी यहां से गुजरेगा, तो मैं जाकर आ गया। तो सुरसा हनुमान जी की इस चतुराई पर बहुत प्रसन्न हुई और सुरसा ने कहा कि बहुत चतुर वानर हो। तो यहां पर सुरसा ने फिर हनुमान जी को आशीर्वाद दिया। खैर, वो भी आशीर्वाद दे सकती थी, तो उसने भी अपनी तरफ से आशीर्वाद दे दिया कि जिस मिशन के लिए आप निकले हो यशस्वी भव, आशीर्वाद दिया। तो यहां पर हनुमान जी सिखा रहे हैं कि मिथ्या अहंकार, इस अनर्थ को यदि हमारी सेवा से दूर रखना है तो सेवा कैसी होनी चाहिए, नम्रता से, नम्र भाव में सेवा होनी चाहिए। जब तक नम्र भाव में सेवा नहीं होगी तब तक भगवान उस सेवा को स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए यहां पर हनुमान जी सुरसा से स्पर्धा नहीं कर रहे थे। हालांकि यदि हनुमान जी चाहते तो स्पर्धा कर हरा देते सुरसा को, परंतु हनुमान जी फिर इतना बड़ा होते 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 फिर तुरंत नम्र बनकर छोटा हो गए। तो वो जो हनुमान जी के छोटे होने की जो क्रिया है वो हमें सीखनी है कि जब सेवा में ये अहंकार आ जाए तो हमें कैसे नम्रता की शरण ग्रहण करनी चाहिए। और बहुत सुंदर उदाहरण दिया गया है कि यदि हमारी भगवत सेवा एक फल के समान है, आम का फल यदि हम लें इसका उदाहरण, तो आम के फल में रस होता है, सुगंध होता है और इतना सुंदर आम का फल होता है, परंतु वो आम की सारी सुंदरता छिपी होती है आम के छिलके में। तो जो आम का छिलका है, आम के छिलके की तुलना नम्रता से की गई है कि हमारी भक्ति में जितने भी सारे रस हैं उन रस को ये नम्रता इकट्ठा रखे है, यदि नम्रता है तो। जैसे कि यदि आम बिना आम के छिलके के सड़ जाएगा, आम का छिलका वो आम के रस को बनाए रखता है, तो वैसे ही हमारे भक्ति के रस को नम्रता पकड़ कर रखती है जब तक नम्रता है, और जैसे ही उस आम में से आम का छिलका निकाल दो तो फिर वो आम सूखने लगता है, सड़ने लगता है। तो वैसे ही हमारी भक्ति से नम्रता निकाल दो तो हमारी भक्ति फिर सूखने सड़ने लगती है और फिर रह जाती है केवल गुठली, चूसी हुई गुठली जिसके अंदर कोई रस नहीं, केवल फेंकने लायक वो। परंतु उसमें से भी आम का वृक्ष उग सकता है क्योंकि वो भगवान के संपर्क में वो भक्त आया है। तो यहां पर सुरसा ये प्रतीक है मिथ्या अहंकार, और हनुमान जी ने सुरसा को किस प्रकार से अपनी युक्ति से संतुष्ट भी किया और सुरसा के वशीभूत भी नहीं हुए हनुमान जी। तो एक साधक को सिखा रहे हैं कि कैसे सेवा में उसे नम्रता के द्वारा भगवान के मिशन को सिद्ध करना होता है। इसके पश्चात एक और राक्षसी, ये भी विचित्र थी, सिंहिका। इस राक्षसी को ऐसा वरदान मिला था कि ये राक्षसी जो भी उस समुद्र से ऊपर उड़ते हुए जाता उसकी परछाई को पकड़ लेती। समुद्र में, समुद्र के सतह पर जो परछाई, उस कोई भी पक्षी या जो भी ऊपर से उड़ता तो परछाई को पकड़ लेने से वो ऊपर रुक जाता। ये शक्ति, ये सिद्धि इस सिंहिका में थी। तो हनुमान जी अब आगे उड़ रहे हैं, अचानक ब्रेक लग गए। तो हनुमान जी ने सोचा मैंने ब्रेक लगाया नहीं, ब्रेक लग कैसे गया? तो एक्सेलेटर दे रहे हैं लेकिन गाड़ी आगे नहीं जा रही, सारे गियर चेंज कर लिए फिर भी गाड़ी आगे नहीं जा रही। तो फिर हनुमान जी ने नीचे देखा कि ये सिंहिका इसने पकड़ लिया है, और वो भी परछाई को, पानी पर परछाई को पकड़ लिया, हनुमान जी को नहीं पकड़ा था, परछाई को पकड़ लिया। तो ये सिंहिका जो हमारी भक्ति का जो तीसरा अंग है, भक्तों का संग, ये सिंहिका भक्तों के संग में कौन सा अवरोध लेकर आती है इसका प्रतीक है ये, और वो है द्वेष। कि सिंहिका हर समय किसी भी व्यक्ति के परछाई को ढूंढती रहती, और परछाई किसी व्यक्ति की कैसी होती है? काली, अंग्रेजी में जिसे कहते हैं द डार्क साइड, शैडो। तो परछाई काली होती है। तो हां, साधकों में कमियां होंगी, त्रुटियां होंगी, परंतु यदि हम सिंहिका के आवेश में आकर केवल उन त्रुटियों को पकड़ेंगे तो हम हमारे भक्त संघ में अवरोध डाल रहे हैं द्वेष के कारण कि ये देखो इसे ठीक से गाना नहीं आता, इसे ठीक से नहाना नहीं आता, इसे ठीक से कपड़े पहनने नहीं आते। हालांकि कमियां होंगी किसी के अंदर, कोई ठीक से तिलक भी नहीं लगा पा रहा होगा। हम कई बार ये छोटी छोटी त्रुटियां ढूंढ ढूंढ कर सिंहिका को प्रवेश देते हैं हमारी साधना भक्ति में। इसलिए भक्तों के समुदाय में प्रभु श्री राम तब तक रहते हैं जब तक कि उस भक्त समुदाय में कोई द्वेष नहीं। जैसे ही द्वेष वहां पर प्रस्तुत हो जाता है या प्रारंभ हो जाता है, वैसे ही प्रभु श्री राम वहां से निकल पड़ते हैं। तो सिंहिका के साथ हनुमान जी ने कैसा व्यवहार किया? मैनाक पर्वत को स्पर्श किया, सुरसा को युक्ति से उसके मुख में जाकर निकल आए, परंतु सिंहिका को मारा। सिंहिका के मुख में प्रवेश करके उसके छाती को चीर कर हनुमान जी बाहर निकले, क्योंकि हनुमान जी ये दर्शा रहे थे कि द्वेष को भगवान की सेवा में भी नहीं लगाया जा सकता। काम वासना को लगाया जा सकता है, क्रोध को लगाया जा सकता है, लोभ को भी लगाया जा सकता है, परंतु द्वेष को नहीं लगाया जा सकता। इसलिए द्वेष को नष्ट ही करना होगा। तो हनुमान जी ने इस प्रकार से सिंहिका का वध किया। और फिर जब हनुमान जी पहुंच गए लंका तो ये लंकिनी मिली। ये लंका के महाद्वार पर बैठी रहती, और हनुमान जी जब लंका पहुंचे तो जैसे ही लंका को देखा हनुमान जी ने, तो लंका के ऐश्वर्य को देखकर हनुमान जी सोचने लगे कि यदि ये रावण राम का भक्त होता तो कितना अच्छा होता। इतनी सुंदर सोने की लंका इसने, बहुत सुंदर लंका नगरी थी, सोने की लंका बना रखी थी अपने रावण ने। अपने राधा गोपीनाथ मंदिर में हमने गोल्ड लीफिंग किया है थोड़ा बहुत, केवल वो परत है, सोने की थोड़ी थोड़ी सी परत यहां वहां लगाई है। सोचिए पूरा शहर असली सोने का, कौन सा 24 कैरेट असली सोने का पूरा शहर इस रावण ने बना रखा था। इसलिए पहले के जमाने में जो राक्षस भी हुआ करते थे उन्हें भी पता था कि ऐश्वर्य किस में है, ये प्लास्टिक। श्रील प्रभुपाद कहा करते थे, एक बार श्रील प्रभुपाद के लिए एयरपोर्ट पर एक आलीशान गाड़ी आई उनको रिसीव करने के लिए, तो एक रिपोर्टर ने पूछा, आप तो साधु हैं और ये इतनी बड़ी गाड़ी आपके लिए, ये क्या? प्रभुपाद ने कहा, आपको क्या लगता है ये गाड़ी में कोई ऐश्वर्य है? अरे टिन पत्रे की बनी गाड़ी है ये, अरे भगवान के भक्त को रिसीव करने के लिए तो सोने की गाड़ी आनी चाहिए। तो वो तो और आश्चर्यचकित होगा, ये तो नहले पे दहला कि उसे लगा कि वो ऐसा कोई ललकारी प्रश्न पूछ रहा है कि श्रील प्रभुपाद को उत्तर देने के लिए कुछ नहीं रहेगा। प्रभुपाद ने कहा, क्या है ये टिन पत्रे की गाड़ी, अगली बार से सोने की लाना कुछ। और वो गाड़ी कौन सी थी? रोल्स रॉयस। सोचिए यदि आपको पता है इस गाड़ी के बारे में, तो ये गाड़ी को श्रील प्रभुपाद कहते थे टिन पत्रे की गाड़ी। तो आजकल इसी में लोग प्रभुपाद अक्सर कहा करते थे कि पहले के जमाने में लोग अपने आप को सुंदर बनाते थे सोने के आभूषण पहनकर, मोती सोना और हीरे जवाहरात इनसे। आजकल तो प्लास्टिक और केमिकल लेप देते हैं अपने ऊपर और उसमें अपने आप को सुंदर मानते हैं। तो यहां पर हालांकि रावण ये राक्षस, परंतु ये जानता था कि ऐश्वर्य होगा सोने का यदि पूरा नगर होगा तो हनुमान जी ने जब सोने की लंका देखी तो हनुमान जी सोचने लगे कि इसे तो राम को अर्पित करना चाहिए। एक भक्त का, भक्त की नजर ऐसी रहती, जब भी भक्त वो इस भौतिक संसार के ऐश्वर्य को देखता है तो सबसे पहले भगवान को याद करता है। हमें भी याद है कि जब हम भगवान के अर्च विग्रह की सेवा प्रारंभ किए थे मुंबई में राधा गोपीनाथ के अर्च विग्रह की सेवा, तो उसके पश्चात कहीं पर भी कोई भी बागीचे में या गार्डन में कोई भी सुंदर फूल को देखते तो तुरंत गोपीनाथ के टर्बन पर बहुत सुंदर दिखेगा ये। और यदि भगवान की भक्ति में नहीं होते तब उस फूल को देखते तो क्या सोचते। आप जानते हैं कि जो भगवान की भक्ति में नहीं होता और जब किसी सुंदर फूल को देखता है तो अपने आप का फूल बनाता है। परंतु हम भक्ति में आ जाते हैं तो जो भी विभूतियां देखते हैं भगवान की ही हैं ये सब, तो उन्हें भगवान की सेवा में। तो जब हनुमान जी ने सोने की लंका, रावण की लंका को देखा तो राम की सेवा में कैसे इसे इस्तेमाल किया जाए। और फिर हनुमान जी सोचे कि इतनी बड़ी लंका नगरी है, इतनी बड़ी बड़ी दीवारें हैं, इतनी चौड़ी दीवारें हैं, कैसे वो वानर सेना पहुंच पाएगी। तो हनुमान जी चिंता करने लगे, परंतु हनुमान जी सोचे अरे राम जी हैं वहां पर उनके साथ, तो राम जी की सेना जब निकलेगी तो क्या ये रावण की लंका कर पाएगी। तो फिर हनुमान जी वो तुरंत वहां पर अंदर जाने का प्रयास उन्होंने किया, तो अंदर जाने का जैसे ही प्रयास किया तो ये लंकिनी आ गई। ए कौन है? तो तुरंत वो लंकिनी चिल्लाने लगी हनुमान जी के ऊपर। तो हनुमान जी ने कहा कौन है, क्या दिखता नहीं कौन है, एक वानर हूं अंदर जाना है। अरे ऐसे नहीं, दिखाओ पासपोर्ट वीजा दिखाओ। श्रील प्रभुपाद कहा करते थे कि ये जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट वो लंकिनी की तरह है कि सब लंकिनी से ट्रेनिंग लेकर बैठते हैं वहां पर, कि भौंकना शुरू करते हैं दिखाओ पासपोर्ट दिखाओ वीजा दिखाओ, क्यों आना चाहते हो, कितने दिन रहोगे, कब जाओगे, कहां से आए हो, क्या करोगे, जैसे लंकिनी ये सब हनुमान जी को पूछ रही। तो हनुमान जी नम्रता से बोल रहे थे कि भाई मैंने बहुत सुना है रावण की लंका के बारे में, तो थोड़ा देखना है मुझे, टूरिस्ट हूं टूरिस्ट। तो लंकी ने कहा कोई यहां पर अंदर नहीं आ सकता, चाहे टूरिस्ट हो चाहे कुछ हो, चलो बाहर निकलो। और लंकी ने वो हनुमान जी को मारने के लिए अपना हाथ आगे की, तो उसने एक प्रहार भी कर दिया हनुमान जी के ऊपर लंकिनी ने। तो जैसे ही हनुमान जी के ऊपर प्रहार किया, हनुमान जी सोचे, पहले तो ये सोचे कि स्त्री है महिला है इसके ऊपर प्रहार मुझे नहीं करना चाहिए, परंतु देखा कि ये तो कोई साधारण महिला नहीं लगती, ये महिला जैसे बर्ताव भी नहीं कर रही, तो इसे मिलना चाहिए कुछ जो ये चाहती है। तो एक तमाचा जोर से हनुमान जी लगाया इस लंकिनी की, और हनुमान जी का तमाचा कोई साधारण नहीं होता। तो जब लंकिनी को इतने जोर से हनुमान जी तमाचा लगाए तो लंकिनी गिरी नीचे और खून की उल्टी की, और फिर लंकिनी ने हनुमान जी को धन्यवाद देना शुरू कर दिया। लंकिनी ने कहा कि मुझे किसने वरदान दिया था? ब्रह्मा जी, मुझे ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था कि जब तुम्हारा उद्धार कब होगा, जब एक वानर आकर तुम्हें थप्पड़ मारेगा। अब देखिए ये भी एक वरदान, हालांकि हनुमान जी के हाथ का थप्पड़ भी वरदान है, तो लंकिनी को यह वरदान मिला था कि जब एक वानर आकर तुम्हें थप्पड़ मारेगा तब तुम्हारा उद्धार, तुम्हारी मुक्ति उसमें लिखी है। और उस दिन से लंका नगरी का विध्वंस लिखा है। तो लंकिनी अब हनुमान जी को प्रणाम करते हुए और दूर से रावण को प्रणाम करते हुए ऑल द बेस्ट, अभी ब्रह्मा जी ने जो संकेत दिया था अब वो शुरू होने वाला है, वानर ने मुझे थप्पड़ मारा है और ये वानर अंदर जाने वाला है, अब संभालो अपनी लंका नगरी को। तो ये लंकिनी ये हमारे प्रचार में बाधा डालने के लिए उपस्थित होती है, जैसे कि हनुमान जी सीता देवी को लाने गए हैं तो उस प्रचार कार्य में ये लंकिनी बीच में रोड़ा डाल रही, और इसलिए प्रचार में जो बाधाएं आती हैं उन बाधाओं से मुक्त होने के लिए जैसे हनुमान जी ने लंकिनी के साथ व्यवहार किया, वैसे ही अभयता से किसी प्रचारक को निर्भयता से प्रचार करना चाहिए। जैसे श्रील प्रभुपाद जी ने ऐसी निर्भयता से प्रचार किया कि सबसे पहले 70 वर्ष की उम्र में, वो भी अमेरिका जैसे देश में, वो भी अमेरिका में न्यूयॉर्क जैसे शहर में गए और वहां पर पैसा नहीं, कोई जान पहचान नहीं, कुछ नहीं, अकेले, और वहां पर इतनी बर्फ पड़ती है कि जब श्रील प्रभुपाद ने पहले बार जब देखा सब जगह पर बर्फ ही बर्फ, तो उन्हें लगा कि शायद किसी ने व्हाइट वॉश कर दिया इस सिटी को, क्योंकि उन्होंने कभी अपने जीवन में इतनी बर्फ देखी नहीं थी। तो सोचिए इतनी ठंडी में कोई इस आयु का व्यक्ति, इस वृद्ध अवस्था में श्रील प्रभुपाद, उन्होंने अपना प्रचार कार्य प्रारंभ किया उस 70 वर्ष की उम्र में, परंतु निर्भयता से। और लीलामृत में आप यदि पढ़ोगे तो कितने सारे अवरोध आए श्रील प्रभुपाद के प्रचार कार्य में, परंतु हनुमान जी की तरह। तो हनुमान जी उन्होंने अपने इस यात्रा में इन सब राक्षसों, जो कि ये सब अनर्थों का प्रतीक है, इनके संदर्भ में कौन कौन सी कृतियों का उपयोग किया ये समझना बहुत आवश्यक है। धृति, कि जब हनुमान जी ये जब कूदे महेंद्र पर्वत से तो दृढ़ संकल्प, कोई संशय नहीं था हनुमान जी के अंदर कि वो इस कार्य को सिद्ध कर पाएंगे कि नहीं। तो सबसे पहले धृति का उपयोग हनुमान जी ने किया छलांग लगाते समय, और दृष्टि, मैनाक पर्वत ने अपने आप को जब प्रस्तुत किया तो हनुमान जी ने अपनी दृष्टि से ये देख लिया, दूरदृष्टि जिसे कहते हैं, दूरदृष्टि से ये देख लिया कि मैं प्रभु श्री राम के कार्य को सिद्ध करने के लिए निकला हूं, यहां आराम करने के लिए नहीं। तो एक साधक को हनुमान जी से यह दृष्टि लेनी चाहिए, दूरदृष्टि, कि दूरदृष्टि क्या है, भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम, भगवत धाम प्राप्ति, इसे कहते हैं दूरदृष्टि। और इस दूरदृष्टि के बीच में बहुत से अवरोध आएंगे जैसे मैनाक पर्वत, तो हनुमान जी ने दृष्टि का उपयोग, दूरदृष्टि का उपयोग करते हुए इस अवरोध को पार किया। और सुरसा के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए अपनी मति लगाई। तो अपनी मति और अपनी बुद्धि हमें साधना में लगाकर कि कब मुझे माया को नहीं कहना है और कब मुझे भगवान को हां कहना है, और कई बार कब मुझे माया को भगवान की सेवा में इस्तेमाल करना है, तो हमें उस प्रकार की बुद्धि होनी चाहिए जैसे कि हनुमान जी ने अपनी बुद्धि लगाई। और अंततः सिंहिका के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए दक्षता से हनुमान जी सिंहिका के मुख में प्रवेश किए और दक्षता से सिंहिका का वध किया। तो द्वेष का वध भी हमें दक्षता से करना होगा, यह हनुमान जी सिखा रहे। अब बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि हनुमान जी, हालांकि सुंदरकांड में सब कुछ बताया गया, तुरंत फास्ट फॉरवर्ड कर दिए कि हनुमान जी ने जब सीता का समाचार ले लिए, सीता से मिल लिए और सीता देवी को बता दिए कि प्रभु श्री राम तैयारी में हैं, आप चिंता मत कीजिए, अब इस रावण के दिन भर गए, पूरे भर गए, अब कोई दिन इसके बाकी नहीं रह गए, तो सब कुछ जब ये संदेश उनको सुना दिया और उनका संदेश लेकर हनुमान जी अब उड़ते हुए जब आ रहे हैं फिर से समुद्र के तट पर, तो वहां पर पूरी वानर सेना और प्रभु श्री राम प्रतीक्षा में हैं, हनुमान जी की प्रतीक्षा में हैं, और प्रभु श्री राम चिंतित खड़े हैं, क्या हनुमान जी सीता देवी से मिल पाए हैं कि नहीं? पता नहीं हनुमान कौन सा समाचार लेकर आ रहा होगा, ये प्रभु श्री राम सोच रहे थे। तो हनुमान जी अब आकाश में, उन्होंने श्री राम को देख लिया और श्री राम के आंखों को देखते हुए हनुमान जी ने यह देख लिया कि आशा भरी आंखों से प्रभु श्री राम हनुमान जी की तरफ देख रहे हैं कि क्या समाचार होगा। कई बार होता है ना कि जब हम किसी की प्रतीक्षा में होते हैं तो आशा भरी नजरों से देखते रहते हैं कि वो व्यक्ति आ रहा है कि नहीं, और यदि वो व्यक्ति कुछ समाचार लेकर आ रहा है, कुछ ऐसा शुभ समाचार, हालांकि ये सबसे शुभ समाचार था कि सीता देवी का समाचार। तो हनुमान जी ने देखा कि प्रभु श्री राम व्याकुल नजरों से मेरी तरफ देख रहे हैं, तो मैं प्रभु श्री राम की व्याकुलता को और नहीं बढ़ाऊं तो कैसे मैं उत्तर दूं प्रभु श्री राम को, यह शुभ समाचार कैसे सुनाऊं। तो हनुमान जी ने सबसे पहले मन में सोचा कि यदि मैं इस वाक्य को कहूं, मुझे सीता मिली, जैसे टेलीग्राम हम कैसे भेजते हैं, टेलीग्राम हम भेजते हैं केवल 3-4 शब्द, फादर सीरियस, है ना। अक्सर जब नौकरी में कोई होता है तो बहुतों को सीरियस बनाता है। तो एक बार एक व्यक्ति, उसने ऐसे ही टेलीग्राम मंगाया, छुट्टी चाहिए थी उसे, तो टेलीग्राम ऐसे मंगाते हैं ना कि ये गुजर गया, वो गुजर गया, ये सीरियस है, वो सीरियस है, तो किसी को अस्पताल भेजते हैं, किसी को स्मशान भेजते हैं। तो इस व्यक्ति ने अपने दादी के विषय में टेलीग्राम मंगाया, ग्रैंड मदर पास्ड अवे, ऐसा टेलीग्राम। तो जब ये फिर से अपना छुट्टी काट के वापस आया तो इसके बॉस ने पूछा कि तुम पुनर्जन्म पर विश्वास तो रखते होगे ना, तो उसने कहा हाँ पुनर्जन्म पर विश्वास है, नहीं तुम्हें तो रखना ही होगा पुनर्जन्म पर, क्योंकि तुम्हारी दादी का फोन आया था। अब पता नहीं कौन से जन्म से फोन कर रही थी वो, अपने कौन सी योनि से फोन कर रही थी, उनका फोन आया तो शायद पता नहीं इस जन्म से कि वो दूसरे जन्म में जो टेलीग्राम आया था वहां से फोन कर रही थी। तो पुनर्जन्म पर विश्वास है ना तुम्हारा, अब क्या कहे वो। तो यहां पर हनुमान जी ने सोचा कि प्रभु श्री राम को ये शुभ समाचार मैं देना कैसे शुरू करूं। तो सबसे पहले मन में सोचा, यदि मैं ये कहूं मुझे सीता मिली, तो इसमें यदि प्रभु श्री राम ये सुन लेंगे, सबसे पहले इस शब्द को सुनेंगे मुझे, तो हो सकता है प्रभु श्री राम इस कल्पना में चले जाएं कि मैं कह रहा हूं कि मुझे नहीं मिल पाई सीता। तो फिर हनुमान जी ने सोचा कि प्रभु श्री राम केवल मुझे इस शब्द को सुनते ही शायद कुछ गलत अर्थ ले लेंगे, तो मुझे अपने बारे में सबसे पहले यह शब्द नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। हनुमान जी सोच रहे हैं, देखिए क्या सेवा भाव है इनका। फिर उन्होंने सोचा कि मैं सबसे पहले सीता का नाम लेता हूं, सीता मुझे मिली ऐसे कहता हूं। फिर हनुमान जी ने सोचा कि यदि मैं सीता देवी का नाम लूंगा तो हो सकता है प्रभु श्री राम इतने व्याकुल हो जाएं कि सबसे पहले सीता देवी का नाम लिया है, क्या हुआ है, जीवित है कि नहीं। तो हो सकता है कि प्रभु श्री राम केवल सीता देवी का नाम सुनने से इस दुख में गिर जाएं कि पहले सीता देवी का नाम क्यों लिया। तब फिर हनुमान जी ने सोचा कि मुझे यदि यह शुभ समाचार प्रभु श्री राम को सुनाना है बिना उन्हें व्याकुल किए, तो मुझे क्या कहना होगा, मिली सीता मुझे। हालांकि ये व्याकरण के अनुसार गलत है, व्याकरण के अनुसार इस प्रकार का वाक्य कहना वो बहुत गलत होगा। हम ऐसे नहीं कहते किसी को कि मिली नौकरी मुझे, परंतु कई बार हमको लगता है कि इससे बड़ा शुभ समाचार और क्या हो सकता है। तो हम भी हनुमान जी के भाव में जाकर जब घर में आकर पिता को या पत्नी को सुनाते हैं तो यही सोचते होंगे कि कैसे सुनाऊं मैं, मिली नौकरी मुझे। परंतु हनुमान जी वो प्रभु श्री राम के अनन्य सेवक भक्त हैं, इसलिए हनुमान जी ने प्रभु श्री राम की व्याकुलता को दूर करने के लिए सबसे पहले इस शब्द को कहा मिली। तो हनुमान जी इसलिए सोचा कि प्रभु श्री राम फिर संतुष्ट हो जाएंगे, हाँ इस शब्द को सुनकर संतुष्ट हो जाएंगे कि हाँ सीता देवी मिल गए। तो यहां पर हनुमान जी हमें सिखा रहे हैं कि प्रभु श्री राम की भक्ति कैसे करनी चाहिए। और हनुमान जी इनका पूरा जीवन, इनका रोम रोम केवल भगवान श्री राम की ही सेवा में लगा रहा। जैसे कि वो बहुत प्रसिद्ध चित्र है, हनुमान जी ने अपनी छाती चीर कर सीताराम का दर्शन करवाया। तो ये बड़ा जमींदार आया था प्रभु श्री राम के महल में, दरबार में प्रभु श्री राम को एक मोतियों का हार अर्पित करने। तो प्रभु श्री राम ने इस जमींदार के सामने मोतियों का हार सीता देवी को अर्पित किया और सीता देवी ने हनुमान जी को अर्पित कर दिया। तो जमींदार को बहुत अपमानजनक लगा, मैंने मोतियों का हार लाया और ये वानर को दे दिया। तो केवल बात यहां तक नहीं पहुंची और हनुमान जी ने किया क्या, मोतियों का हार निकाला, एक एक मोती तोड़ने लगे। उसके सामने मोतियों का हार तोड़ रहा है ये, और हनुमान जी वो मोती एक एक तार से बाहर निकालकर फोड़ने लगे। पूछा ये क्या है, बानर भी ऐसा नहीं करता, ये तो क्या कर रहा है, अरे इतना कीमती मोतियों का हार एक एक मोती को तोड़ तोड़ कर क्यों। तो हनुमान जी ने देखा कि कि मैं एक एक मोती में देख रहा हूं सीताराम है कि नहीं, यदि हैं तो मैं स्वीकार करूंगा, नहीं तो ले जाओ फेंको इसको। तो जमींदार कहता, अच्छा तो अपने आप को इतना बड़ा भक्त मानते हो सीताराम का कि सब जगह सीताराम सीताराम को देखते हो, तो पहले मुझे दिखाओ कि हृदय में है क्या तुम्हारे सीताराम। तो फिर हनुमान जी ने चीर के छाती बोले अपनी, पवन पुत्र हनुमान मेरे मन में बसे हैं राम, मेरे तन में बसे हैं राम। अपनी छाती चीर कर उस जमींदार को दिखा दिया, ये देखो। वो जमींदार, उसका सौभाग्य देखो कि सीताराम का दर्शन तो हो रहा था राम दरबार में ऑल्टर पर, परंतु जो हनुमान जी के हृदय का ऑल्टर, हनुमान जी के हृदय के ऑल्टर में जो सीताराम बसे वो सबसे सुंदर, और वो दर्शन इस व्यक्ति को हुआ हनुमान जी की कृपा से। तो इसलिए हमें भी हनुमान जी द्वारा दिए गए जो सीताराम की भक्ति है उसकी अभिलाषा रखनी चाहिए, और जब हनुमान जी द्वारा दी गई सीताराम की भक्ति हमें मिलेगी तब जाकर हम प्रभु सीताराम का गुणगान, उनकी प्रशंसा, उनकी कृपा प्राप्त कर पाएंगे। हालांकि राम दरबार का चित्र तो हमने देखा है, बहुत प्रसिद्ध है राम दरबार, परंतु राम दरबार जब वो प्रभु सीताराम लक्ष्मण वहां पर जब राम दरबार में वो खड़े हुए तो हनुमान जी देखिए अपनी नम्रता से क्या कहते हैं। वो प्रभु श्री राम से कहते हैं कि आपका ये राम दरबार पूरा नहीं हुआ। तो प्रभु श्री राम ने पूछा क्यों, तो हनुमान जी कहते हैं कि आप पतित पावन हैं और यदि पतित पावन का दरबार बैठ रहा है तो उसमें पतित भी तो होना चाहिए कोई। तो हनुमान जी ने प्रभु श्री राम से कहा कि यदि आप पतित पावन राम अवतार हैं और आप यदि राम दरबार को बिठा रहे हैं तो एक पतित को अवश्य ही होना चाहिए। तो प्रभु श्री राम की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने हनुमान जी का आलिंगन किया और हनुमान जी ने कहा कि इसलिए मैं आपके राम दरबार में आना चाहता हूं ताकि आप जो पतित पावन हैं मैं आपके उस पद को सिद्ध कर सकूं। और जब ये जो समाचार लेकर हनुमान जी प्रभु श्री राम के समक्ष खड़े हुए तो प्रभु श्री राम इतने प्रसन्न हुए कि उनके प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं थी। और प्रभु श्री राम ने हनुमान जी से कहा, हनुमान मैं क्या दूं तुम्हें, मैं हालांकि एक क्षत्रिय राजा हूं परंतु मेरे पास आज तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं। मैं यहां पर एक वनचारी के रूप में घूम रहा हूं, केवल वानर ही मेरे आसपास इर्द गिर्द हैं, सब कुछ मेरा छीन लिया गया, मैं क्या दूं हनुमान तुम्हें। तो प्रभु श्री राम ने सोच विचार कर हनुमान जी से कहा, एक चीज मैं तुम्हें दे सकता हूं तुरंत जो मेरे पास है और वो है मेरा आलिंगन। तो हनुमान जी को प्रभु श्री राम ने भेंट के रूप में अपना आलिंगन दिया। और सोचिए इससे बड़ी भेंट और क्या हो सकती है कि प्रभु श्री राम का आलिंगन मिल जाए। तो हनुमान जी से आज के दिन हम यही प्रार्थना करना चाहेंगे कि हनुमान जी जिन्होंने अपना सर्वस्व प्रभु श्री राम की सेवा में लगाया हुआ है तो वो हनुमान जी हमारे ऊपर कृपा करें, और यदि उनकी कृपा होगी तो हम भी कुछ प्रभु श्री राम की भक्ति कर पाएंगे, और प्रभु श्री राम को प्रसन्न कर पाएंगे। और विशेष रूप से जैसे हनुमान जी ने सीता का मिलन करवाया प्रभु श्री राम से, वैसे ही हम यदि हनुमान जी के पद चिन्हों पर चलते रहें तो इन सब अनर्थों को पार करते हुए हम भी जो हमारी खोई हुई भक्ति है उसे फिर से प्रभु श्री राम से मिला सके। बोलो हनुमान जी की, सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की, बोलो पवन पुत्र हनुमान जी की, हनुमान जयंती महामहोत्सव की ताई गौर प्रेमानंदी।